الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے رمضان سے پہلے 172 نمبر آیات تک کر لیا تھا سورہ البقرہ کے اندر. اب آگے چلتے ہیں 173 نمبر آیت سے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے شروع کرتے ہیں. 173 کو میں دہرا رہا ہوں تھوڑا سا تاکہ مضمون جڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے وہ میتا کو حرام کیا ہے، خون کھانے کو حرام کیا ہے، سور کا گوشت کھانے کو حرام کیا ہے، اور جو جانور اللہ کے نام لیے، غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس کو حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ آدمی کسی مجبوری میں پھنس جائے تو پھر اگر وہ خدا سے بغاوت کے بغیر اور حدود سے تجاوز کیے بغیر ان چیزوں میں سے کھا لیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں. یہ چار چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں شریعت کے اندر. کھانے کے اعتبار سے جو چیزیں ان سے ملتی جلتی ہوں گی وہ بھی حرام ہو جائیں گی، لیکن کہنے کو صرف چار چیزیں حرام ہیں، لیکن جو ملتی جلتی چیزیں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حرام ہو جاتی ہیں. آگے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس بات کو جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنی شریعت کے اندر سے، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. شریعت کا جو بھی چھپانا ہے اللہ کے دین کو، یہ ظاہر ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. لیکن یہ آیت اصولی طور پر تو جنرل ہے کہ جو بھی اللہ کی شریعت ہوگی چھپایا جائے گا تو وہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہاں حلال اور حرام کے پہلو سے بات چل رہی ہے تو اس لیے اس کے اوپر توجہ زیادہ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ صرف چار ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام نہیں کی. یہود نے بھی کچھ چیزیں حرام کر رکھی تھیں اور کچھ قریش مکہ نے بھی کر رکھی تھی، اور حرام کرنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس میں فتوے بھی شامل ہوتے ہیں، شرک بھی ہوتا ہے، اور کچھ دوسری اپنے علاقائی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر شرک کے لیے حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں قسم کا جانور جو ہے وہ ہمارے فلاں دیوتا کی پسندیدہ چیز ہے، اس لیے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، کھایا نہیں جا سکتا. اور فتوی بازی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارے فتوے آرام سے دے دیتے ہیں کہ یہ چیز کھانی حرام ہے، یہ حلال ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو بھی شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر آپ کو کسی وجہ سے آپ نے کوئی مسئلہ پیدا کر دیا اور بس انکار کر دیا، اس کی توجیہ کر کے، اس کی تعویل کر کے. تو اس طرح سے جو بھی شریعت کے پہلو ہوتے ہیں وہ ہم چھپا جاتے ہیں، حقیقت اپنے فرقے کی دفاع کے لیے، اپنے مذہب کی دفاع کے لیے. قرآن مجید کے مقابلے میں جو لوگ حق کو نہیں مان رہے تھے قرآن کی باتوں کو، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے جو مذاہب تھے ان کے اوپر چوٹ لگتی تھی کہ اچھا ہم اگر اونٹ ہمیں ہمارے ہاں حرام ہے اور ہم اگر قرآن کی بات مان لیں تو حضرت موسیٰ کی شریعت تو چھوٹی ہو گئی کیونکہ اس میں اونٹ حرام تھا، حالانکہ اللہ نے واضح کر دیا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں اونٹ حرام نہیں تھا، حضرت یعقوب کو پسند نہیں تھا تو اس لیے لوگوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا. تو اس طرح سے جو شریعت کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ اس کو چھپائے گا تو وہ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا کبیرہ گناہ کرتا ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں وہ بڑی چھوڑی سی قیمت لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ میرے پاس آئے کہ فتویٰ دے دو، میں نے کہا جی اتنے پیسے دے دیں فتویٰ دے دیتا ہوں، ایک تو یہ پیسے کھانا ہو گیا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں یہ مسئلہ ہوتا تھا، इसमें जो समन कलील है यानी उसका कीमत जो वसूल की जाती थी वो मुआशरे में अपने साख है, अपना मकाम है, अपनी अपने दीन का दिफा है, अपने मसलक का दिफा है, इस तरह की चीज़ें फ़ायदा होती हैं। मसलन अगर मैं कुरान के मुताबिक कोई बात कर देता हूँ और उम्मत उसके साथ थोड़ा सा फ़र्क रखती है तो उम्मत मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगी। तो अगर मैं उम्मत की बात, कुरान मजीद की बात को दबा कर नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक उम्मत की बात को चलाता रहूँ ताकि उम्मत मुझे अपना समझे और मेरे साथ जुल्म ज़्यादती ना करे, तो मैंने क्या किया, छोटी सी कीमत के बदले शरीयत को तब्दील कर दिया या छुपा लिया। तो ये काम नहीं करना चाहिए, खा कुछ भी हो जाए। अल्लाह के जो अहकाम हैं, अल्लाह की जो शरीयत है, उसको बबागे दोहल वाज़े अल्फाज में साफ सुथरे तरीके से इकरार भी करना चाहिए और बयान भी करना चाहिए। तो अब जो मैं बात बार बार ये जुमला बोल रहा हूँ कि ये कबीरा गुनाह है, तो उसकी वजह यह है कि आगे अल्लाह ताला ने उसकी सज़ा बड़ी सख्त बताई है। फरमाया कि ये जो कुछ शरीयत को छुपा के कीमत वसूल करके खा रहे हैं तो ये अपने पेटों में आग भर रहे हैं। अब जो इनको फ़ायदा हो रहा है, अपना मसलक बच गया, अपना मज़हब बच गया, अपनी कौम कबीले में दोस्ती रह गई, लोगों ने घर से नहीं निकाला, मारा नहीं, तो जो कुछ ये अब इनको हासिल हो रहा है खुदा की शरीयत छुपा कर, जो इनको फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, वो सारे के सारे ऐसे ही है जैसे पेट में आग भरना, यानी दोज़ख इख्तियार करना। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो आयत आई है ये आई भी इस मज़मून में है कि हलाल और हराम की बात हो रही है। तो ऊपर आपको याद होगा कि अल्लाह ताला ने एक जुमला सूरह नाम में मैंने हवाला दिया था, सूरह नाम में अल्लाह ताला ने हुर्मत यानी चीज़ों के, खाने पीने की चीज़ों के हराम होने की दो वजह बताई थी। वो आगे पहुँचेंगे इंशाल्लाह तो वहाँ भी पढ़ेंगे। एक ये कि वो जो चीज़ें हैं वो खुद नजसों रिजसों, और दूसरा ये कि उसके हासिल करने का तरीका फासिकाना हो या उनको इस्तेमाल करने का तरीका फासिकाना हो। तो मसलन रुपया जो हमारा पाकिस्तानी रुपया हो, डॉलर हो, कुछ भी हो, ये हलाल है, लेकिन मैं चोरी करके आपकी जेब से निकाल लूँ तो हराम हो गया, तो ये फिस्क की वजह से हराम हुआ है। और सूअर के गोश्त और खून के अंदर खुद नजासत है, तो ये दो वजह हैं। अब यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अगर दुनिया का कोई फ़ायदा हासिल करोगे इस तरीके से कि मेरी शरीयत छुपा लो, तो ये भी फिस्क हो गया। तो फिस्क जो तुमने फ़ायदे उठाए, तुम्हारा कारोबार चल गया, तुम्हें लोगों ने कुछ नहीं कहा, अपना दोस्त समझा, अपने जत्थे में शामिल किए रखा, तो क्या तुमने किया, तुमने जो समने कलील हासिल किए, जो दुनिया के छोटे छोटे फ़ायदे हासिल किए हैं, ये तुम दरअसल कुछ नहीं कर रहे हो, फ़ायदे नहीं उठा रहे हो, बल्कि अपने पेट में आग भर रहे हो। ये अब अल्लाह ताला ने उस जुर्म की अहमियत बता दी कि शरीयत को पूरे तरीके से बयान करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए। और अगर अपने मसलक की, अपने मज़हब की, अपने ग्रोह की गलती साबित हो रही है तो गलती को मान लेना चाहिए बजाय इसके कि अल्लाह की शरीयत को छुपाया जाए। तो कुरैश भी और अहले किताब भी दोनों इसके मुजरम थे। कुरैश को अमूमी तौर पर मालूम था कि अल्लाह ताला ने कुछ जानवर हराम नहीं किए हुए, जो वो नज़र देवताओं के नाम पे चढ़ाते थे उनको मालूम था, लेकिन कहते यही थे कि हमें अपने आबाओ अजदाद से दीन यही चला आ रहा है। ऐसे ही यहूद को पता था कि शरीयत में क्या चीज़ें खुद हमने हराम की हैं, और ये भी पता था कि कौन सी चीज़ें जो अंबिया ने सजा के तौर पर उन पर हराम की थी, और वो ये भी जानते थे कि कौन सी जो सिर्फ नापसंद का मसला होता है। तो इन सबको जानने के बावजूद वो अपने मसलक, अपने मज़हब के तायद के लिए कुरान मजीद की बात मानने को तैयार नहीं थे, चुनाचे वो एक लंबी फहरिस्त, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे उम्मत में अकीदों की एक पूरी पूरी किताबें छपती हैं। और आगे चल के हम 16 आल इमरान में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने 5 अकीदे बताए हैं जो इस्लाम और ईमान कुफर का मायार कायम होते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो किताबुल्लाह में लिखी हुई हैं या सुन्नत मतवात्रा में शामिल हो गई हैं, वो भी इनकार करने से आदमी काफिर हो जाता है, लेकिन वो अकीदे का मसला नहीं होता, वो तो यह कि कुरान का इनकार हो गया। जब आपने कहा कि मैं ये बात नहीं मानूंगा तो कुरान का इनकार हो गया, तो वो असल ईमान जो किताबों पर ईमान है उसके खिलाफ चला गया आपका अमल। तो अकीदे 5 ही रहते हैं, उसके कुछ जुज़ियात होती हैं, कोई मसलन आपने नबी को नौज़बिल्ला सच्चा नहीं माना तो असल में आपने नबी का इनकार कर दिया, तो ये नहीं हुआ आपने कही कुरान की आयत जो है ये समझ नहीं आ रही मुझे, ये गलत है, आपने असल में कुरान की बात का इनकार कर दिया, तो दरअसल किताबुल्लाह का इनकार हो गया। तो इस तरह से ये जो वाज़ेह रहना चाहिए कि जब हम छुपाते हैं तो हमें दुनिया का कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा होता है, इसलिए हम छुपाते हैं। उस फ़ायदे को अल्लाह ताला ने कहा है कि वो पेट में आग भरना है, यानी बहुत बड़ा गुनाह करना है कि जैसे आदमी दोज़ख़ अपने पेट में डाल रहा हो। आगे जो जुमला है वो इसके ऊपर अतफ़ होना कबूल नहीं करता, तो इसलिए बीच में एक हज़फ़ मानना पड़ेगा। वो ये कि ये अपने पेटों में आग भर रहे हैं तो अल्लाह ताला इनको उस आग से नहीं बचाएगा, बल्कि ये आग उनको खा जाएगी, ये भी आग में पड़ेंगे और अल्लाह ताला नहीं बचाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला इसलिए नहीं बचाएंगे कि अल्लाह ताला का जुर्म कर रहे हैं वो, ठीक है। उसके ऊपर ये अगली बात जोड़ी है कि वला युकल्लिमहुमुल्लाह यौमल क़यामा, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन से बात नहीं करेगा, वला युज़क्किहिम, और उनका ना तज़किया करेगा। ये वो अहम चीज़ है जो क़यामत वाले दिन हमारे काम आ सकती है। सादा मतलब तो यह है कि अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा। इसके दो तीन पहलू यहाँ पेश नज़र हो सकते हैं। एक ये कि अल्लाह ताला आज कुरान मजीद में उनसे कलाम कर रहा है, और तौरात की सूरत में अहले किताब से और इंजील की सूरत में अल्लाह ताला कलाम करता रहा है, लेकिन क़यामत वाले दिन खुदा के शरीयत को, उन्हीं किताबों को जिनके ज़रिए से कलाम हुआ था, उनको छुपाने की वजह से अल्लाह ताला इनसे पसंद ही नहीं करेंगे कि इनसे बात करें। एक तो ये पहलू इसमें यहाँ मौजूद है। दूसरा पहलू ये मौजूद है कि क़यामत वाले दिन कुछ मामलात होने हैं, ये उनकी तरफ इशारा। दो चीज़ों का जिक्र हदीस में भी हुआ है, इनमें से दो चीज़ों का। आगे चलकर अल्लाह ताला ने एक तीसरी चीज़ इसे शामिल किया, अल्लाह कलाम नहीं करेगा, अल्लाह ताला इनका नज़र नहीं डालेगा, अल्लाह उनका तज़किया नहीं करेगा। तीन चीज़ें हैं, नज़र डालना, कलाम करना और तज़किया करना। जो कलाम करना है इसको हदीस में नजवा कहा गया है कि क़यामत वाले दिन बंदा मोमिन जो गुनाहगार होगा, एक है काफिर है उसका मामला अलग है, जो गुनाहगार होगा उससे अल्लाह ताला बुलाएंगे उसको, उसके साथ सरगोशी करेंगे, पूछेंगे तुमने ये गुनाह किया, वो बंदा कहेगा जी मैंने किया, गलती हो गई, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे। ये कलाम हो गया। क़यामत वाले दिन जो अल्लाह कलाम करेंगे उसकी एक सूरत अहदीस में बयान की गई है। जो दूसरी सूरत वला युज़क्किहिम, उनको पाक नहीं करेगा, इसकी भी एक सूरत अहदीस में बयान हुई है। वो ये है कि सब लोग जो जन्नत में जाने वाले होंगे चले जाएंगे, कुछ लोग रह जाएंगे, उनको आग में डाला जाएगा। उससे लोगों ने समझा कि दोज़ख में डाला जाएगा, नार दोज़ख के लिए भी इस्तेमाल होती है और आग के लिए भी। वो क़यामत वाले दिन तज़किए की आग होगी, तो उसमें प्रोसेस आग में जलाकर साफ़ किया जाएगा, जैसे हमारे यहाँ कुछ गाड़ियों के पुर्जे साफ़ किए जाते हैं आग में जलाकर, इसी तरह इनके गुनाह ऐसे होंगे कि नजवा से साफ़ नहीं किए जाने वाले होंगे, तो उनको आग में डालकर थोड़ा तपा कर मैल कुचैल साफ़ कर दिया जाएगा। और अहदीस में आता है कि वो उस आग में से ऐसे निकलेंगे जैसे सुनहरे दाने गंदम के होते हैं, यानी बिल्कुल सफाया हो जाएगा, जो उनके गंदगी लगी होगी वो साफ़ हो जाएगी। जो दूसरे आगे चलकर अल्लाह ताला ने वला यंजुर इलैहिम के अल्फाज बोले हैं, तो वो तीसरा तरीका है कि कुछ यूँ समझिए कि तीन कैटेगरीज कर लीजिए। एक वो है जिनको नज़र अनायत से अल्लाह ताला साफ़ कर देंगे, जाओ भी उनके गुनाह बहुत थोड़े होंगे। दूसरे होंगे जिनके बुलाकर बाकायदा एतराफ़ करवाया जाएगा और फिर माफ़ किया जाएगा। और तीसरे होंगे कि ना वो नज़र अनायत से माफ़ होने वाले होंगे, ना वो एतराफ़ से माफ़ होने वाले होंगे, बल्कि उनको आग में तपा कर साफ़ किया जाएगा। ये मफहूम है जो अहादीस की रोशनी में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये तीन तरह से, तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि जो दीन को छुपाते हैं उनके साथ ये दोनों मामलात नहीं होंगे, यानी उनका जुर्म इतना है कि अल्लाह ताला कलाम करना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया में उन्होंने अल्लाह के कलाम को छुपाया था, अल्लाह के अहकाम को छुपाया था, तो अल्लाह ताला कलाम करना भी पसंद नहीं करेंगे, और ना इस काबिल समझेंगे कि उस आग में तपा कर साफ़ कर लिए जाए। अब ये मैंने हदीस की बुनियाद पर दो तीन तरीके बता दिए हैं। मुमकिन है कि तज़किए के और भी तरीके हों, मसलन किसी को पानी से साफ़ कर दिया जाए, किसी को जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में आया कि बर्फ़ से साफ़ कर दिया जाए, तो ये हमें नहीं मालूम। लेकिन तज़किए का एक अमल होगा जिसमें गुनाह साफ़ कर दिए जाएंगे। तो वजह क्या है? वजह यह है कि जन्नत में सिर्फ वही लोग जाएंगे जिन्होंने अपना तज़किया किया होगा, या वो इस काबिल हो जाएंगे कि अल्लाह ताला उनका तज़किया कर दें, या वो इस काबिल होंगे क़यामत वाले दिन कि अल्लाह ताला कहेंगे कि चलो इतने गुनाह हो गए हैं लेकिन मेरे तज़किये के मुस्तहिक ठहरते हैं, उनका अल्लाह ताला तज़किया कर देंगे। अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई मैंने ये बात क्यों निकाली है? सादा जुमला है जैसा सारे मुफस्सरीन ले रहे हैं कि अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं करेगा और उनका तज़किया नहीं करेगा। तो ये जो तज़किया का लफ्ज़ है यही की वर्ड है यहाँ पर कि तज़किया तो क़यामत वाले दिन नहीं होना चाहिए। तज़किया तो दुनिया में अल्लाह ताला ने इम्तहान इसी में डाला है कि हम अपना तज़किया करके जाएँ। तज़किया का मतलब है कि अपने अकीदे दुरुस्त कर लें, अपने नज़रियात दुरुस्त कर लें, अपने अखलाक दुरुस्त कर लें, अपने जिस्म को पाक साफ रखें और अगर गुनाह हो जाए तो तौबा करते रहें, ये तज़किया है। तो अपने अमाल दुरुस्त कर लें, तो इस तज़किया यही नाम है। तो अब क़यामत वाले दिन तो अमाल का मौका नहीं मिलना है, तो इसलिए अब अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तज़किया करेंगे ख़ुद। तो लेकिन ये तज़किया अदल के मुताबिक होगा। कुछ ऐसे लोग होने, यानी अल्लाह ताला इतने सख्त नहीं हैं कि क़यामत वाले दिन एक आदमी को रियायती नंबरों से अगर पास हो सकता है तो उसको पास कर दिया जाएगा। तो ये तीनों अमल उनके साथ होंगे जिनके साथ रियायती अमल दिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो रियायती नंबर जो हैं वो बस इतने हैं, 2-1-5 का कर दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने 3 दर्जे रखे हुए हैं कि रियायती नंबरों से पास होने वाले 3 किस्म के लोग हैं। एक, नज़र डालने से साफ़ हो जाएंगे मामला, दूसरे कलाम करने से, और तीसरे आग में डालकर या किसी और प्रोसेस से तज़किया कर दिया जाएगा। अब जब ये दोनों तरीक़ों से इनका तज़किया नहीं होगा, गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो ये उसका लाजमी नतीजा है। तो गोया जो शरीयत को छुपाते हैं उनका ये नतीजा लाजमन निकलेगा। इससे हमारे जैसे लोगों के लिए जो दीन की खिदमत कर रहे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही संगीन वईद है इसके अंदर, लेकिन वो लोग भी जो अपने अपने मसालिक का दिफा कर रहे होते हैं, जो अपनी आम जिंदगियों में मामला कर रहे होते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम शरीयत को छुपा तो नहीं रहे। तो अब जब ये जुर्म इतना बड़ा है और जुर्म किस मानी में है, ये हम पीछे बात कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने, यहाँ देखिए कि जो गुनाह हैं उनमें से एक गुनाह अल्लाह ताला ये भी बयान करते हैं कि तुम खुद अपनी तरफ से अल्लाह का नाम लेकर दीन बयान करो। ये बड़े जुर्मों में से है कि आप अल्लाह का नाम लेकर अपनी तरफ से फतवा दे दें। वो अल्लाह का बात, अल्लाह की बात ना हो, अल्लाह का दीन ना हो, लेकिन आप कह दें कि अल्लाह का दीन है। यहाँ 169 सूरह अल बकरा की थोड़े 2-3 आयतें पहले आयत है कि वा अंतकूलू अल्लाह ही माला तालमू। यहाँ शैतान की तरफ अल्लाह ताला ने बताया था कि शैतान जो है, तुम शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, यानी हलाल व हराम में तुम शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, क्योंकि वो तुम्हें 3 चीज़ों का हुक्म देता है। बुराई का हुक्म देता है, फहाशी का हुक्म देता है, और इसका हुक्म देता है कि अल्लाह ताला के ऊपर फतवे लगाते रहो, यानी अल्लाह ताला के नाम पर दीन बनाते रहो। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये जुर्म है। सू जो है वो समझ लीजिए कि गुनाह के सारे काम, फहाशी और यानी जनाकारी, बदकारी वगैरह, और ये कि अल्लाह ताला के ऊपर ऐसी बातें कहो जो अल्लाह ने नहीं कही हैं। बस मैंने कह दिया कि झाड़ू को अगर ऊपर की तरफ रखें तो गुनाह होता है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम है कि बताएं कि गुनाह होता है कि नहीं होता, मैंने अपनी तरफ से कह दिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए, ये कबीरा गुनाहों में से। उसी की रोशनी में इस आयत को देखिए, तो दरअसल अल्लाह ने जो चीज़ें हराम की हैं उनको ही हराम समझना चाहिए, जो अल्लाह ने चीज़ें हलाल की हैं उनको हलाल समझना चाहिए, उनको अपनी तरफ से फतवेबाजी से हराम नहीं करना चाहिए। तो गोया आप दरअसल अल्लाह की जगह पर बैठ जाते हैं, क्योंकि हलाल और हराम का हक सिर्फ अल्लाह को हासिल है। हमें जिस दायरे में दिया गया है वो बादशाहों के कानून के, रियासत के, स्टेट के पहलू से दिया गया है, उसमें भी अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि मेरे ही कवानीन की पैरवी की जाए। हाँ, जहाँ पर मैंने खामोशी इख्तियार की है वहाँ आज़ादी है तुम्हें। तो ये आयत जो है वो बहुत सख्त है, इसलिए इसको अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए कि अल्लाह की निगाह में यह कितना बड़ा जुर्म है। उलाइक अल्लज़ीन अश्तरबु ज़लालत बिलहुदा वल्लज़ाब बिलमग़फ़िरा, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने गुमराही को हदायत के बदले में ख़रीद दिया है और अजाब को मग़फ़रत के बदले ख़रीद दिया। ख़रीदने की चीज़ गुमराही और अजाब है, और जो चीज़ देकर उन्होंने ख़रीदी है वो हुदा और मग़फ़रत है। जब भी कोई आदमी गलत हरकत करता है तो यही काम करता है कि वो गुमराही को पसंद कर रहा होता है और हदायत को छोड़ रहा होता है। इस वक्त इंसानों की एक बड़ी आबादी इस चक्कर में मुब्तला है कि हमें कोई ऐसा दीन बताया जाए जो हिस्सी मानी में टेंजिबल तरीके से साबित हो सके, खुदा भी ऐसा हो जिसको हम छू सकें, देख सकें, सूंघ सकें, और हदायत भी ऐसी हो कि जिसका फटाफट दुनिया में नतीजा निकले। उधर मैं नमाज पढूं उधर रिज़्क खुल जाए, इधर मैं रोज़े रखने शुरू करूं तो मेरी सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए, दिल भी साफ़ हो जाए, शरियाने भी साफ़ हो जाएं। कुछ इस तरह का दीन चाहते हैं। तो इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? इसके पीछे भी वही चीज़ें जो इन लोगों के हाथ थी कि समनन कलीला, दुनिया के कुछ फ़ायदे। तो मज़हब या दीन या जो हदायत होती है उसके कई मकासद होते हैं। वो दुनिया में फ़ायदा दे या ना दे, दीनी एतबार से कुछ फ़ायदा देगी, रूहानी एतबार से कुछ फ़ायदा देगी, आखरत के एतबार से फ़ायदा देगी। तो मसलन सर्दियों में फजर का वज़ू करना आदमी को बीमार कर देता, तो दुनिया का तो कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन आखरत में फ़ायदा होगा। तो हमने मज़हब जो अल्लाह का मज़हब है उसमें दुनिया के फ़ायदे बताए ही नहीं गए। यानी पूरा कुरान मजीद खाली है कि तुम नमाज़ पढ़ोगे तो मैं तुम्हें रिज़्क दूंगा, या नमाज़ पढ़ोगे तो सेहत अता होगी, खाली। ये भी नहीं कहा कि नमाज़ पढ़ोगे तो मैं इल्म अता करूंगा, नहीं कहा, खाली है इस बात से। क्यों? क्योंकि उसका रुख आखरत की तरफ, नमाज़ पढ़ोगे तो आखरत में कामयाब होगे, रोज़ा रखोगे तो आखरत में कामयाब होगे, नेकी पर कायम रहोगे तो आखरत में कामयाब होगे। इस दुनिया को तो कह रहा है समने कलील, समने कलील हासिल करने के लिए दीन को छुपाया जा रहा है। तो वो हम कहते हैं दीन के अमल करते हुए हम भी समने कलील ले लें, नमाज इसलिए पढ़ें कि सेहत ठीक हो जाए, रोज़ा इसलिए रखें कि अंदर की शरियाने साफ़ हो जाएं, और अकीदा इसलिए बनाएं कि इम्तिहानों में पास होते रहें, कामयाबी के झंडे गाड़ते चले जाएं। तो ये समने कलील है कुरान मजीद के अल्फाज में। समने कलील क्यों है? इसलिए नहीं कि मैं मादियत परस्त नहीं हूँ, या इसलिए नहीं कि मैं जदीद जहन को कुछ छोटा समझता हूँ, इसलिए कि ये आरजी है। 60-70 साल के लिए आपको हासिल होना है, 100 साल के लिए हासिल होना है। तो कितने ही अमीर व कबीर लोग हैं कि दुनिया से तो खाली आ ही गए, उनके बच्चों ने अगली ही नसल में उड़ा के रख दिया उनकी सारी कमाई को। तो जो कुछ यहाँ है वो समने कलील है, खा वो आपके पास 100 साल के लिए आ जाए तब भी समने कलील है। फिरौन को क्या हासिल हुआ, नमरूद को क्या हासिल हुआ? तो समने हर एतबार से दुनिया जो कुछ भी है वो समने कलील है। तो मज़हब के अंदर समने कलील तलाश करने वाले उस वक्त भी थे, आज भी हैं। तो मज़हब के अंदर समने कलील नहीं तलाश करनी चाहिए, मज़हब एक आखरत के पहलू से चलने वाली चीज़ है। तो फरमाया कि ये गुमराही को ख़रीद रहे हैं, हदायत को बेच रहे हैं, और अजाब को ख़रीद रहे हैं और मग़फ़रत को बेच रहे हैं। लेना उलट चाहिए था, हदायत लेनी चाहिए थी, गुमराही छोड़नी चाहिए थी, मग़फ़रत को लेना चाहिए था, अजाब को छोड़ना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा सौदा कर रहे हैं। इसको पंजाबी मुहावरे में कहेंगे मत उलट गई है। तो जिस आदमी की मत उलट जाए, अकल मान पड़ जाए, तो वो ये इस तरह की हरकतें करता, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेता। क्यों ऐसा है? अल्लाह ताला ने ये जुमला क्यों बोला है? इसलिए कि जो भी आपके कुरान मजीद के मुखातिब हैं वो ये जान चुके थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, इसके बावजूद मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए कहा है कि इन्होंने गुमराही को ख़रीदा है और ہدایت کو بیچا ہے، عذاب کو خریدا ہے اور مغفرت کو. خریدنے کا ترجمہ میں لفظی اعتبار سے کر رہا ہوں، اصل ہے ترجیح دی ہے، پسند کیا ہے. تو جب ہم سودا خریدتے ہیں تو ہم اپنے پیسوں کے بدلے میں، مثلا کپ خریدا ہے میں نے، گلاس خریدا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنے روپوں کے مقابلے میں گلاس کو اہمیت دے دی ہے. تو اب گلاس میرے لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جب کوئی چیز دے کر خریدتا ہے تو اس کی وجہ سے عربی محاورے میں پھر مطلب ہو گیا کہ وہ اس کو پسند کر رہے ہیں. تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کیا ہے، اور عذاب کے بدلے میں، مغفرت کے بدلے میں عذاب کو پسند کیا ہے. فما اصبرهم علی النار، لغوی ترجمہ جملے کا یہ ہے کہ کس چیز نے ان کو آگ پر ثابت قدم بنا دیا ہے. اور محاورتاً اس کا مطلب ہے کیا ہی صابر ہیں یہ آگ پر. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ دل سے مانتے ہیں، حقیقت ان پر عیاں ہو چکی ہے، پھر بھی اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، تو یہ کتنے ہی صابر. حیرت ہوتی ہے، تو کتنے حیرت ہے کہ یہ آگ پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، آگ میں ہی جانا ہے، آگ میں ہی جانا ہے، آگ میں ہی جانا ہے. تو اپنے عمل سے ہمیں یہود کا اور قریش کا کیا مذاق اڑانا ہے، ہماری اپنی حالت یہی ہے. ہمیں سب معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے، رشوت لینے کا مطلب کیا ہے، دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے، نمازیں نہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، لیکن ہم نہیں پڑھتے، یہ سارے کام نہیں کرتے. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہم جانتے بوجھتے آگ کی طرف جا رہے ہیں، تو ویسے وہ بھی جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا ہے. تو یہاں شریعت کے اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو ہمارا دین ہے اس میں جو بنیادی باتیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رمضان سے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ بات شروع ہوئی ہے آیت نمبر 163 سے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ بتایا تھا کہ یہاں سے جو فصل شروع ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اصلاحات کر رہے ہیں، توحید پر قائم کر رہے ہیں پورے دین کو، اور پورے دین کو خدا کی طرف نسبت دینے کے لیے یہاں پر اصلاحات ہو رہی ہیں. تو صرف الہ ہی وہ ذات ہے جس کو دین دینے کا حق حاصل ہوتا ہے، کوئی اور حق نہیں رکھتا. انبیاء بھی اللہ کا دین ہی آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح ہمیں کچھ چیزوں میں خود سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے، ایسے انبیاء کو بھی ایک بڑے درجے میں یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ بھی دین کی چیزوں کو بیان کر سکیں. لیکن وہ بھی اجتہادات ہوتے ہیں، وہ نبی کے اجتہادات ہوتے ہیں، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اجتہادات جو ہوتے ہیں اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا. تو اس لیے یہ جو دین ہے اس کی بنیاد تصور الہ پر کھڑی ہے، اور تصور الہ میں توحید مانی گئی ہے. تو اب دین ملنے کی جگہ کتنی ہے؟ دو نہیں ہے، ایک. تو وہ کون سا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ اللہ ہے. تو جب اللہ نے کی طرف سے دین آنا ہے تو باقی سارے جو ہم نے خود بنائی ہوئی تصورات ہیں، خود بنائے ہوئے عقیدے ہیں، خود بنائے ہوئے شریعت ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. یہ اس کی تمہید تھی. اس تمہید میں جو خدا کی ذات ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر دلائل دیے. توحید پر دلائل دینے کے بعد فرمایا کہ اس کے باوجود، یعنی کائنات میں دو خداؤں کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے اس سے زیادہ اپنے ان خداؤں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو، حالانکہ قیامت والے دن یہ ان کے کام نہیں آئیں گے، اس وقت چھوڑ بھول جائیں گے یہ لوگ. پھر 168 سے حلال و حرام پہلی شریعت کے ضابطے کو درست کیا گیا تھا کہ تم حلال کھاؤ گے، طیب چیزیں کھاؤ گے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرو گے. وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. اس سلسلے کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آ کے مکمل کیا ہے کہ معاملہ شریعت میں کس طرح کا ہے. تو شریعت میں نے واضح کر دی ہے، چار چیزوں کے سوا کوئی چیزیں حرام نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور جو اس بات کو چھپائے گا، چار کی جگہ پہ پانچ حرام کرے گا، یا جو یہودیوں کے ہاں حرام تھے ان کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی شریعت کو چھپانے کی کوشش کرے گا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اور وہ ہدایت کو اختیار کرے گا، ہدایت کو چھوڑے گا اور ضلالت کو اختیار کرے گا، اور مغفرت کو چھوڑے گا اور عذاب کو اختیار کرے گا. یہ تمہید کا نتیجہ یہ نکالا ہے. اس کے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں واضح کیں ان میں دیکھیے کہ چند نکات جو ہیں وہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ پچھلے سے سلسلہ جڑ جائے. ایک یہ کہ اس میں یہ بات, یہ اصول ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو جس چیز پر پایا اسی کے اوپر عمل کریں گے. خدا کے مقابلے میں یہ بات نہیں چلتی, لوگوں کے مقابلے میں چل سکتی ہے. کہ آپ کہیں جی کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے تو میں کہوں جی کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے, ٹھیک ہے چلے گا, میرے ماں باپ تو ایسا کرتے تھے, آپ کہیں جی میرے ماں باپ ایسا کرتے تھے, یہاں چل سکتا ہے. لیکن جب شریعت اللہ تعالیٰ دے رہے ہوں, اللہ کے رسول کی بات سامنے آ رہی ہو, تو پھر یہ اسلوب نہیں چل سکتا, پھر اللہ کی بات ماننی پڑے گی. تو یہ الہ ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم ماں باپ کی بات کو چھوڑ دیں اور الہ کی بات مان لیں. یہ اصول ہے جو ہمیشہ واضح. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تنقید یہ کی تھی کہ اولو کانا آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون, کہ کیا تب بھی اپنے ماں باپ کی بات مانو گے کہ ان کو عقلی نہ ہو, چیزوں کی سمجھ نہ ہو, اور تب بھی مانو گے کہ ان کے پاس اللہ کی ہدایت نہ ہو, تب بھی مانو گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا. تو ماں باپ اگر سمجھنے والے ہیں اور اگر ان کے پاس دین کی ہدایت ہے تو پھر ہم ان کی بات مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک اصول واضح کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اصول واضح کیا کہ میرے جو چیزیں ہیں ان میں طیبات ہیں وہ اہل ایمان کو کھانی چاہیے. پیچھے بھی جب حلال اور طیب کا ذکر کیا تھا تو وہاں پر بھی دو لفظ بولے تھے, حلالاً طیبہ, اور یہاں پر بھی حلال اور طیب دونوں کا کانسیپٹ واضح رہنا چاہیے. حلال وہ چیزیں ہیں جو شریعت میں حلال کر دی جاتی ہیں کہ آپ یہ کھا سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, اور طیب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی ذات میں پاکیزہ ہوتی ہیں, شریعت نے حلال کیا ہو یا نہ کیا ہو وہ پاکیزہ چیزیں ہیں. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں کے بات واضح کر دی تھی کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا, کہ وہ چیزیں کھاؤ جو طیب ہیں اور حلال کر دی گئی ہیں, اور شیطان کی پیروی نہ کرو. مطلب یہ تھا کہ جن طیب چیزوں کو تم نے حرام کر رکھا ہے ان کو حلال سمجھو اور کھاؤ ان کو. اب یہاں پر یہ فرمایا کہ آیت نمبر 172 میں کہ اے ایمان والو طیبات میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق میں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں پر حلال کھانے کو شکر کے ساتھ جوڑا ہے. یہ میں نے واضح کیا تھا کہ شکر کا عربی زبان میں وہ مطلب نہیں ہے جو حمد کا ہے. حمد کے معنی اور ہیں اور شکر کے معنی اور ہیں. شکر انسانوں کا بھی ہوتا ہے, جیسے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی وصیت میں ہے کہ وشکر لی والے والے دیا, میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اردو میں ہم اپنے انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے, ان کے لیے ہم نے شکریہ کا لفظ بنایا ہوا ہے, شکر اللہ ہی کا ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں شکر انسانوں کے لیے ہوتا ہے, اور الحمد والا جو شکر ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس میں عبادت کا مفہوم ہے, اس میں توحید کا مفہوم ہے کہ یہ صرف خدا کے لیے بولا جا سکتا ہے وہ الفاظ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے طیب کھاؤ اور شکر کرو اللہ کا. تو گویا حلال چیزیں کھانا, طیب چیزیں کھانا, یہ اللہ کی شکر گزاری ہے. شکر گزاری کے معنی میں نے یہ بتایا تھا کہ اکنالج کرنا. اکنالج کرنا, والد نے بیٹے کو کہا بیٹا شام کو یہ چیز لیتے آنا, بیٹا لے آیا تو اس نے کیا کیا, اس کو اکنالج کیا ہے. باپ نے حسن سلوک سے پالا ہے, بیٹا بڑھاپے میں حسن سلوک کرے گا تو کیا کر رہا ہے, اکنالج کر رہا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. کبھی ہم لفظوں میں کر لیتے ہیں, کبھی عمل کے ذریعے سے کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو رویہ تھا میں نے ویسا ہی رویہ اختیار کیا, آپ نے اچھا کیا میں نے بھی آپ کے ساتھ اچھا کیا, تو یہ شکر ہے. تو خدا نے طیب چیزیں پیدا کی, رزق میں دیں, تو ان کو کھانا شکر ہے, ان کو حرام سمجھنا ناشکری ہے, اور اللہ کے حلال چیزوں پر قائم رہنا یہ اللہ کی حکم کا اکنالج کرنا ہے, اس کے مطابق اپنے عمل کو استوار کرنا ہے. تو اس معنی میں بھی شکر ہو جائے گا. ان کنتم یاہ تعبدون, تو جو بات شروع کی تھی الہکم الہ واحد, وہ یہاں تعبدون کے لفظ سے واضح کر دی ہے کہ تم نے حلال اور طیب چیزیں کھانی ہیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اگر تم اللہ ہی کو خدا مانتے ہو. اگر تم اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھتے ہو تو تمہیں انہی چیزوں کو کھانا ہے جو طیب ہیں. अब तैयब जो है वो दोनों तरह से होती हैं, ज़ाहरी भी होती हैं और अंदर से भी तैयब होती हैं। मसलन सूअर का गोश्त देखें तो वो ज़ाहिर से तैयब हो सकता है लगे आपको, लेकिन उसके अंदर नजासत है, क्योंकि कुरान मजीद ने उसको नजस करार दे दिया है। तो हम नजासत की जो दोनों हालतें हैं, एक उसकी ज़ाहरी हालत है वो हम पहचान सकते हैं, उसमें हमें देर नहीं लगती, हम पखाने को गुरेज करके गुजरेंगे, खा वो जानवर का हो या इंसानों का हो, हमें उसमें कराहत आती है, पेशाब से कराहत आती है, गली सड़ी चीज़ पड़ी हो उससे कराहत आती है, छपकली देख लें उससे कराहत आती है, तो यहाँ हम नजासत को महसूस कर सकते हैं। लेकिन बाद जगहों पर हम नजासत को महसूस नहीं कर सकते, वो फिर अल्लाह ताला बताते हैं। तो सूअर के गोश्त में जो नजासत थी मुझे आपको नहीं पता चल सकता, वो अल्लाह ने बताया कि इसके अंदर नजासत है, तुम इसको नहीं खाओ। यानी हमारे जितने नजासत की चीज़ें हैं उनमें से कोई चीज़ उसके गोश्त के अंदर पाई जाती है, उसके गोश्त के अंदर नापाक चीज़ों में से कोई एलिमेंट पाया जाता है जो ज़िबा करने के बावजूद साफ़ नहीं होता, मना कर दिया गया। इसी तरह गैरुल्लाह के नाम, अल्लाह का नाम ना लेकर ज़िबा करने से क्या नापाकी आ जाती है मुझे नहीं पता, वो अल्लाह को पता है, उसने बता दिया कि गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा करोगे तो वो हराम हो जाएगा। इसी तरह आपने नाम अल्लाह ही का लिया है लेकिन किसी आस्थाने पर जाकर ज़िबा कर दिया है, किसी आस्थाने पर जाकर बांट दिया है, नापाक हो गया, मुझे नहीं पता क्या नापाकी आई लेकिन नापाक हो गया, हराम कर दिया गया उसको। तो इस तरह से कुछ नजासतें हम पहचान सकते हैं, या कह लीजिए कुछ तैयबात को हम पहचान सकते हैं, कुछ तैयबात को हम नहीं पहचान सकते। उसमें फिर अल्लाह ताला ने यह असूल बता दिया कि तुम इन तरीक़ों से किए गए चीज़ों को हराम समझोगे। अब खून भी है, खून की नजासत हमें पता ही नहीं चल सकता कि क्या नजासत है उसमें, वो गोश्त के अंदर रह जाता है वो हम खा लेते हैं, लेकिन जो गोश्त के बाहर बह के आ जाता है उसको हम नहीं खाते क्योंकि हमें बता दिया गया कि इसके अंदर नजासत है। तो नजासत के ये दोनों पहलू हैं, खुद हमारे जो हम जो नजासत के अमल से गुजरते हैं और वजू करते हैं नहाते हैं उसमें भी बात चीज़ें हमें समझ नहीं आती कि छोटा सा अमल किया उसके बाद पूरा नहाना पड़ गया, कुछ पता नहीं। इसी तरह वजू कर रहे हैं आप, सारे जिस्म के अज़ा गीले हैं, पाँव धोते धोते हवा खारिज हो गई, क्या नापाकी आई है कुछ पता नहीं, ये खुदा को पता है कि क्या नापाकी आ गई है, तो हमें दोबारा वजू करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो नजासत है और तैयबात का एक हिस्सा हम पहचान लेते हैं, एक हिस्सा हम नहीं पहचान सकते, उनमें से चंद चीज़ें अल्लाह ताला ने यहाँ बयान कर दी हैं। उसके बाद अगला असूल जो बताया है हलाल और हराम के अंदर वो ये है कि मजबूरी के कायदे में खाया जा सकता है। इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर आपको मैसर हो, ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाए, तो आप इन चारों में से खा सकते हैं, इजाज़त दी गई, लेकिन दो शर्तों के साथ, एक के आप बागी ना हो और एक के हदूद से तजावुज़ करने वाले ना हो। बागी होने का मतलब है कि अल्लाह की शरीयत देखी जाएगी, जो कोई मसला नहीं मैं खा लेता हूँ, कल क़यामत आएगी वो देख लेंगे, ये बगावत होती है। और वला आद जो अल्फाज बोले गए हैं वो ये होता है कि आप अब हराम खा रहे हैं तो मजबूरी के लिहाज से खा लें, बस ज़िंदगी बच जाए आपकी, आपने देह ही चढ़ा ली, तो ये हदूद से तजावुज़ करना है। आपने पेट भर के मज़े मज़े से खा रहे हैं, दावतें उड़ा रहे हैं, ये काम ख़राब हो जाएगा। अब इसमें अगला जुमला बहुत अहम, अगला असूल नया एक और असूल है, वो ये कि जब हम कोई मजबूरी के कायदे में कोई काम जायज़ समझ लेते हैं, यानी वैसे वो हराम था लेकिन मजबूरन वो जायज़ हो गया है, तो ये नहीं कहा कि तुम्हें मैं जो है वो तुम्हें कोई गुनाह नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, यानी है तो ये गुनाह की चीज़ लेकिन मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, है ये गुनाह ही की चीज़ लेकिन मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। तो आज हमने असूल पढ़ा है, वो अगला असूल है कि शरीयत को छुपाना नहीं चाहिए। शरीयत को छुपाएंगे तो ये खुदा वैसा ही अमल है जैसा आपने अल्लाह ताला के ऊपर इफ्तरा बांध दी, अल्लाह का नाम लेकर आपने झूठा दीन अल्लाह का हुक्म करके बता दिया। तो ये अगला आज हमने जो असूल पढ़ा है वो ये है आयत 174 में। तो इसमें अल्लाह ताला ने पूरी वजाहत से फरमाया है कि जो कुछ मैंने नाजिल किया उसको तुम छुपा नहीं सकते हो, और दुनिया के फ़ायदे के लिए तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। दुनिया के फ़ायदे के लिए समने कलील के अल्फाज अल्लाह ताला बोलते हैं अपने मुहावरे में। तो मैंने बताया कि हम बाज़ुकात शरीयत के अहकाम पर अमल नहीं करते दुनिया के कुछ फ़ायदों के लिए, उसको अल्लाह ताला समने कलील कहते हैं। कभी अपना दिफा हो रहा होता है, اب مثال کے طور پر ہم جیسے لوگوں سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، تو اب کوئی غلط بات ہو گئی فرض کر لیجئے، تو میں اس وجہ سے نہ مانوں کہ لوگ کہیں گے اچھا پتہ نہیں ساری باتیں غلط کرتا رہا ہے. تو اب دنیا کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، کہ نکما ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو میں مانوں ہی نہ بات کو، تو یہ دنیا کے فائدے کے لیے میں نے ایک حق بات ماننے سے انکار کر دیا. غلطی کا اعتراف انسان کو کرنا چاہیے، غلطی کا اعتراف توبہ کے مترادف. آپ کے سامنے اگر آپ نے غلطی بتائی ہے تو کر لینا چاہیے، کسی اور نے بتائی ہے تو اس کے سامنے. ہم انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی پرفیکشن نہیں آ سکتی. میں نے بڑے بڑے جید علماء کی چیزیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، وہ بعض اوقات لگتا ہے کہ قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، موٹی موٹی آیتیں سامنے نہیں ہیں. یعنی ایک آیتیں ہوتی ہیں جو کہیں چھپی ہوئی گم رہ گئیں، ایک وہ آیتیں ہوتی ہیں جو زیادہ تر عمل میں ہوتی ہیں علماء کے ہاں بھی اور محدثین کے ہاں بھی، فقہا کے ہاں بھی. وہ آیت آپ کے سامنے نہیں ہے، جید عالم ہے فتویٰ دے رہا ہے، آیت سامنے نہیں. تو اس طرح سے یہ انسانوں کے ہاں یہ کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اگر بدنیتی سے آدمی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو معاف ہو جائے گا، لیکن بہرحال احتیاط اس میں کرنی چاہیے. تو یہ سمن قلیل جو ہے یہ اہم اصول ہے کہ دنیوی فائدے کے لیے کوئی گناہ کرنا، شریعت سے ہٹنا، حق سے ہٹنا، یہ سمجھیے کہ آپ نے اپنے آپ کو گناہ گار بنا لیا، کبیرہ گناہ کر لیا. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی احمق آدمی سودا خریدنے جائے تو گھٹیا چیز لے آئے اور بڑھیا چیز دے آئے، یہ ایسے ہی ہے کہ گمراہی خرید لے، ہدایت کو دے آئے، مغفرت چھوڑ آئے اور عذاب کو اپنے گھر لے آئے، یہ اس طرح کی چیز. تو یہاں پر میں ختم کر لیتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے.